SBS हिंदी।
दोस्तों SBS हिंदी पर आपने एंडोमेट्रियोसिस बीमारी के बारे में जाना होगा। अक्सर जानकारी के अभाव के चलते महिलाएं इस बीमारी को पीरियड पेन्स यानी कि मासिक धर्म के साथ जोड़ देती हैं और उसका इलाज कहीं ना कहीं अनदेखा किया जाता है। इस बीमारी के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार इस बीमारी से होने वाले दर्द से महिलाएं बेहोश तक हो जाती हैं। इसके साथ साथ महिलाओं की गर्भधारण करने की जो क्षमता होती है उसको भी प्रभावित करती हैं। ऐसी बीमारी है कि जिसका कायमी रूप से कोई भी इलाज नहीं है और इस विषय पर हमें जानकारी दे रही हैं डॉक्टर तलत उपल। डॉक्टर तलत, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद
डॉक्टर तलत। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि मैंने कई पीड़िताओं से बात की जो इस समस्या से, इस बीमारी से जूझ रही हैं और उन्होंने कहा कि जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं, अपनी परेशानी बताती हैं, तो उन्हें इलाज के लिए जो कुछ भी स्टेप्स बताए जाते हैं या जो प्रक्रिया बताई जाती है उसके साथ साथ एक ये भी सुझाव दिया जाता है कि आप जल्दी से बच्चा पैदा कर लीजिए अगर आप बच्चा चाहती हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी कि कितनी हद तक एंडोमेट्रियोसिस महिलाओं की गर्भधारण करने की क्षमता को असर पहुँचाता है या प्रभावित करता है।
ज़्यादा ये 20s में डायग्नोज की जाती है और क्योंकि मैंने कहा था कि कभी कभी औरतों को 7 से 10 साल लग जाते हैं एक्चुअली डायग्नोज होने में, तो इट इज़ अ स्पेक्ट्रम, मगर ज़्यादा ये यंगर ही औरतों में डायग्नोज की जाती है क्योंकि ये बीमारी जो औरतों का हार्मोन है ना ईस्ट्रोजन उस पर डिपेंडेंट है और उसके सबसे हाइस्ट लेवल्स तभी होते हैं व्हेन वीमेन आर इन द रिप्रोडक्टिव एज, एडोलेसेंट से लेके बिफोर मेनोपॉज तक। तो उसमें बस यही होता है कि जिस तरह ये लाइनिंग एक्टिव होती है उसके हिसाब से इट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन द यंगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो होता है औरतों का, और उनको फिर सिम्टम्स अनफॉर्चुनेटली फर्टिलिटी के भी एंगल से हो सकते हैं जो बहुत यू नो क्रिटिकल हो सकते हैं क्योंकि अगर वो बच्चे चाहती हैं तो इट इज़ समथिंग दैट कैन एक्चुअली अफेक्ट दैट क्वाइट सिग्निफिकेंटली और कभी दे नीड टू सपोर्ट फ्रॉम IVF टू गेट अ बेबी। और जो एक्चुअल जो डायग्नोसिस होती है ना एंडोमेट्रियोसिस की, जो हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिचुएशन, ये होती है कि की होल सर्जरी से देखें अंदर, वो अगर जो एंडोमेट्रियोसिस है उसको निकालें या उसको बर्न करें, अगर निकालें तो उसे लैब में भेजें और अगर लैब में पैथोलॉजिस्ट कहते हैं हाँ ये एंडोमेट्रियोसिस है तो दैट्स द मोस्ट आइडियल सिचुएशन जिसको मेडिकली हम कहते हैं बायोप्सी प्रूवन डिजीज। एक्चुअली फर्टिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अगर वो पेशेंट चाहते हैं उस वक्त बच्चा पैदा करना, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट के उस औरत का उस वक्त क्या मसला है और हाउ कैन वी सपोर्ट हर। तो देर इज़ नॉट ओनली जस्ट द फर्टिलिटी एंगल, देर इज़ ऑल्सो के उसके पेन को कंट्रोल किया जाए, उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाए एंड ऑफकोर्स उसे अप्रोप्रिएट फर्टिलिटी एडवाइस और रेफरल की जाए अगर इतना सिग्निफिकेंट है।
आप लोगों को ये बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने गत वर्ष नेशनल एक्शन प्लान फॉर एंडोमेट्रियोसिस जारी किया था ताकि इस रोग के लक्षणों को बेहतर तरीके से लोगों के समक्ष पहुंचा सकें, इस रोग के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके और बेहतर उपचार उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो इसी के प्रति जागरूकता फैले उस उद्देश्य के साथ एंडोमेट्रियोसिस दिवस के रूप में 30 मार्च को विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है एंडोमेट्रियोसिस ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर और भी जानकारी जुटा सकते हैं। तो डॉक्टर तलत, अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या इलाज मौजूद है इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए। जैसे कि इंटरव्यू से पहले हम और आप बात कर रहे थे और मैंने शुरुआत में भी कहा कि इस बीमारी का कोई स्थायी यानी कि परमानेंट इलाज नहीं है।
अच्छा, इसकी जनरली यही फीलिंग है कि देयर इज नॉट रियली अ क्योर फॉर एंडोमेट्रियोसिस, मगर इसके दो तरीके हैं, या मेडिकली मैनेज की जा सकती है दवाइयों के हिसाब से या सर्जिकली मैनेज की जा सकती है कि जैसे मैंने मेंशन किया था आप अंदर देखो और निकाल दो जो हिस्से एबनॉर्मल हैं या जो एनाटॉमी है उसको नॉर्मल, जो चिपक गए हैं ऑर्गन्स उनको एडिशंस निकाल के कोशिश करो कि नॉर्मल कर सको, या कभी कभी हरिता दोनों भी यूज़ होते हैं। तो कभी मेडिकल करके फिर सर्जिकल ट्राई करके फिर मेडिकल पे हम बाद में औरतों को डाल देते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, तो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन سچویشنس میں ڈپینڈنگ آن کہ اس پیشنٹ کی کیا ضرورت ہے اور کیا اس کی نیڈز ہیں, وٹ ڈز شی وانٹ ٹو ڈو. تو جو میڈیکل ہے اس میں ظاہر ہے شروع تو ہم اسی سے کرتے ہیں نا کہ اگر درد زیادہ ہو رہا ہے تو اس کے پین ریلیف آپٹیمائز کی جائے, عورتوں کو انکریج کیا جائے کہ پیریڈ سے پہلے ہی بے شک آپ وہ پین ریلیف شروع کر دو وین دا پینس از ایکسپیکٹڈ اور اسٹارٹس, تاکہ ویٹ نہ کریں پیریڈ کا بفور دے اسٹارٹ پین ریلیف. اور جو ایسپرین ٹائپ کی ڈرگز ہوتی ہیں وہ جنرلی پینیڈول کی ورائٹی سے بہتر ہوتی ہیں کیونکہ وہ انفلمیشن کو بھی ہیلپ کرتی ہیں اپارٹ فرام دا پین سائڈ آف دا ڈیزیز. پھر یہ ہے کہ اورل کانٹرسیپٹیو پل اوبویسلی ناٹ فار سم ون ہو از ٹرائنگ ٹو ہیو اے بیبی, مگر جو باقی عورتیں ہیں ان کے لیے جو ہارمونس ہم اسپیشلی جو پروجیسٹرون ہارمون ہے نا عورتوں کا, وہ نیچرلی ڈیمپن کرتے ہیں اس لائننگ کو, تو اس کی ایکٹیویٹی کو تھوڑا سا نا وہ کرتے کام کرتے. اکثر ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں اسے کنٹینیوسلی لیتے جاؤ ریدر دین اسٹاپنگ ان دا مڈل, تاکہ یہ جو ہارمون کا انوائرمنٹ ہے پروجیسٹرون ہائی ہو اور یہ ڈیزیز تھوڑا ڈیمپن ہو. اس کے علاوہ ایک آئی او ڈی ڈالا جا سکتا ہے یوٹرس میں وچ ہیز پروجیسٹرون ان اٹ. تو اس کے علاوہ دو تین اور میڈیسنس ہیں جو اسپیشلسٹ پھر دیکھتے ہیں اف دے اپروپریٹ ٹو یوز اور ناٹ, مگر سرجیکل آپشن آفن از دا وے ٹو گو اگر سمپٹمس بیسک چیزوں کے ساتھ ریزالو نہیں کر رہے. اور اگر ان دا ورسٹ کیس سینیریو اگر لگ رہا ہے کہ ایون ود دا کی ہول سرجری کی ہے, کوشش کی ہے کہ بھائی کچھ اینڈومیٹریوسس نکالی جائے, اس کے باوجود درد ہو رہا ہے, سم پیشنٹس اینڈ اپ نیڈنگ ہسٹریکٹمی کیونکہ اس کا اور کوئی حل ہوتا ہی نہیں ہے.
ڈاکٹر طلعت بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کر. آپ ایس پی ایس ہندی کے اسٹوڈیو میں آئیں اور ہمارے شروتاؤں کے لیے بے حد ہی مہتوپورن جانکاری دی, اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد.
آپ کے وچار ہمیں بتائے, ایس پی ایس ہندی کو فیس بک پر لائک کرے اور @ SPS Hindi کو ٹویٹر پر فالو کرے.